الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस खुतबे और दुआओं के साथ हम आज तफसीर क्लास शुरू करते हैं। मुख्तसर सी छुट्टियां बीच में रही हमारी, विंटर ब्रेक्स भी जिनको कह सकते हैं। तो अच्छा, किसी औलाद का नाम है जी, जज़ाकअल्लाह, अपने नाम याद चेंज करवाने का याद करवा दिया। ठीक है, मैं आजकल हमारा लैपटॉप यूज हो रहा है बच्चों की क्लासेस के लिए इस वजह से। तो सूरह बनी इसराइल की तफसीर हम पढ़ रहे हैं मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से। इसमें इस आयत का खुलासा तफसीर की खुलासा तफसीर हमने पढ़ ली थी, और मारफ व मसाइल पेज नंबर 473 473 के ऊपर हम थे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तजअल यदक मगलूला, कि अपने हाथ को बांध के मत रखो, इला उनुके का अपनी गर्दन से, राइट, अपनी अपनी गर्दन से अपने हाथों को बांध के मत रखो। वाला तब सुतहा, और ना उसको बिल्कुल खोल दो। कुल्लल बस्ती फतक उदा मलूम महसूरा, कि तुम बैठे रहो मलूम हो करके और महसूर हो करके, ठीक है, यानी मलामत ज्यादा हो करके और थके हारे हो करके बैठे रहो। ना इस तरह बैठे रहो ना उस तरह बैठे रहो, क्यों, अपने हाथों को ना बंद कर दो ना बिल्कुल ही खोल दो। इन्ना रब का यबसुत रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, बेशक तेरा रब खोलता है रिस्क को जिसके लिए वो चाहता है और जिसके लिए चाहता है उसको बंद कर देता है। यकदर, यकदर का मतलब उसको टाइट कर देता है, ठीक है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक वो अपने बंदों के बारे में खबीर है और बसीर है, ठीक है। वो अपने बंदों के अहवाल के बारे में, बंदों के हालात के बारे में खबीर है, सारी खबरें रखता है और बसीर है, सब कुछ देखता है। तो खुलासा तफसीर में हमने, खैर वो तो पढ़ लिया था, आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि अल्लाह की राह में इतना खर्च करना कि खुद परेशानी में पड़ जाए, उसका दर्जा, ठीक है। पीछे एक हदीस हमने पढ़ी थी कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत ने अपने बेटे को भेजा कि मेरी अम्मी आपसे कुर्ते का सवाल करती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, कोई दूसरा कुर्ता तो है नहीं, सिर्फ वही है जो मैं पहना हुआ हूँ। तो उससे माजरत कर ली, वो लड़का वापस गया और फिर वापस आ गया कि अम्मी कह रही हैं कि जो आप पहने में है ना वही दे दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही कुर्ता उसको इनायत फरमा दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने हुए थे। तो उसके बाद जो है मजीद कोई कुर्ता नहीं था, और बस धोती शलवार, शलवार भी नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी पसंदीदा लिबास था शलवार, ठीक है, यानी प्रॉपर जो दो पैंचों में टांगे जाती हैं जिसको शलवार कहा जाता है, राइट। पतलून तो एक दूसरी शक्ल की चीज हो जाती है, लेकिन हम जो पाकिस्तानी इंडियन पजामा एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, शलवार थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है। लेकिन ज्यादातर नबी अलैहिस्सलाम घर के अंदर जो है ना वो तहबंद बांधा करते थे। तहबंद जो है वो थोड़ी बहुत मुख्तलिफ शक्लें हैं, बस ये लुंगी तहबंद और धोती ये सब एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। जिस तरह से कि एहराम के अंदर मर्द नीचे का एहराम बांधते हैं ना, तो उसी को तहबंद कहते हैं। तो आप बस वही पहन करके घर में बैठे रहे। जब अजान हुई तो नबी अलैहिस्सलाम बाहर नहीं निकले, ठीक है। हालांकि मर्दों का जो ऊपर का जिस्म होता है वो सतर नहीं होता है, ठीक है, उसको छुपाना फर्ज नहीं होता है। औरत का तो पूरा बदन सतर है ना, जिसको छुपाना फर्ज है, बशमूल बालों के। औरत के जो बाल होते हैं सर के बाल, वो 70 में दाखिल है और उसका पूरा बदन जो है सिवाय हथेलियों के और पैरों के यानी पाँव जो 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 फीट जिसको कहते हैं उनके अलावा पूरा का पूरा बदन और बाल ये 70 में दाखिल है। अगर बाल खुले रहें तो हराम है, ये बालों का खुलना हराम है। हाथों का खुलना, जैसे कुछ खवातीन जो हैं वो अबाया तो पहन लेती हैं, बुरका तो पहन लेती हैं, लेकिन उनके जो आस्तीनें होती हैं ना वो इतनी लूज होती हैं कि जरा सा हाथ उठाया फोन, जैसे फोन को कान में लगाने के लिए हाथ उठाती हैं ना, तो वो अबाया के जो आस्तीन होती है ना वो नीचे गिर जाती है, नीचे उतर जाती है, जैसे इसको कहते हैं आस्तीन उतर जाना। ठीक है, तो 70 खुल गया, ठीक है, 70 खुल गया, हाथ एक्सपोज हो गए, नॉट द हथेली, ठीक है, नॉट द फिस्ट, बल्कि जो आर्म है वो एक्सपोज हो गया। गुनाहे कबीरा, गुनाहे कबीरा, क्यों? 70 खुल गया गैर महरम के सामने। अब घर के अंदर नहीं कि घर के अंदर जो है महरम है उनके सामने भी 70 खुल गया तो गुनाहे कबीरा, नहीं, बल्कि बाहर होते हुए 70 खुल गया, गैर महरम मर्दों के सामने 70 खुल गया, गुनाहे कबीरा। ठीक है, अब कितनी खवातीन इस बात का ख्याल करती हैं कि उनका हाथ ना खुले, उनके बाल ना खुले, ऊपर से ढक भी रही होती है ना, अगर जिसको हिजाब कहती हैं, हालांकि वो हिजाब नहीं होता, वो तो सिर्फ स्कार्फ होता है, हिजाब तो बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है ना, पर्दे का नाम हिजाब है, लेकिन सर के ऊपर पहनने वाली स्कार्फ को जो है ना वो हिजाब कहना शुरू कर दिया, शैतान ने कहलवा दिया असल में, ठीक है ना। ये इस किस्म की जो गलतियां हैं ना जिससे कि मुसलमान को गुनाह कबीरा मिलता हो, शैतान इस किस्म की गलतियां करवाता है। ठीक है, स्कार्फ का नाम हिजाब रख दिया, हिजाब पहन करके जा रही हैं, हिजाब पहन, तो भाई स्कार्फ पहन के जा रही हो, हिजाब पहन के नहीं जा रही हो, ठीक है, हिजाब पहनने की चीज नहीं होती है। एक और बात, हिजाब पहनने की चीज नहीं होती है, हिजाब करने की चीज होती है, ठीक है ना, सब क्लियर है भाई, किसी को इसके ऊपर एतराज या किसी को नहीं पता था तो उम्मीद है क्या पता चल गया होगा, हिजाब पहनने की चीज है ही नहीं, हिजाब पहनने की चीज नहीं है, बुरका पहनने की चीज है, स्कार्फ पहनने की चीज है, निकाब पहनने की चीज है, दस्ताने पहनने की चीज है, ग्लव्स, राइट, हिजाब पहनने की चीज नहीं है। आइंदा मत इस्तेमाल कीजिएगा इस लफ्ज को कि मैं हिजाब पहन के जा रही हूं, भाई कौन सी चीज पहन के जा रही हो, हिजाब तो पहनने की चीज ही नहीं होती, हिजाब तो करने की चीज होती है, हिजाब तो रुकावट को कहते हैं, हिजाब तो पर्दे को कहते हैं, ठीक है, पर्दा कर रही हो कि नहीं कर रही हो, ये करने की चीज है या ना करने की चीज है, नहीं करोगी तो गुनाह गुनाह कबीरा मिलेगा, ठीक है। तो बहरहाल बात कहाँ से शुरू हुई थी, खैर नबी अलैहिस्सलाम, अच्छा, 70 मर्दों का ऊपर का बदन जो है वो 70 नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हया और नबी अलैहिस्सलाम की डिसेंसी इसके खिलाफ थी कि आप जो है ना वो कुर्ते के बगैर ही बाहर चले जाएं, तो नबी अलैहिस्सलाम घर में बैठे रहे, तो सहाबा को फिर तश्वीश हुई कि भाई क्या हो गया, आपसे अजान है हो गई है और हमें मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम घर में ही गए थे, कहीं और तो गए नहीं है, तो बाहर क्यों नहीं निकल रहे, तो सहाबा जो है ना वो आए तो पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के पास कुर्ता ही नहीं है। ठीक है, फिर जाहिर फिर उसके बाद क्या हुआ होगा ये इस हदीस के अंदर यहाँ पे जिक्र नहीं है, किसी ने अपना कुर्ता दे दिया होगा, किसी ने घर से कोई और चादर ला दी होगी या कुछ कर दिया होगा, बहरहाल लेकिन उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई, ठीक है, कि इतना ज्यादा मत दे दो कि तुम खुद जो है ना वो बैठे रहो मलूम और महसूर हो करके। तो आगे फरमाते हैं कि इस आयत से बजाहिर इस तरह खर्च करने की ममानियत मालूम होती है, ठीक है, ममानियत मालूम होती है यानी बिल्कुल जैसे मना कर दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है, कि जिसके बाद खुद फकीर व मोहताज हो जाए और परेशानी में पड़ जाए। इमाम तफसीर कुतुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये हुक्म मुसलमानों के आम हालात के लिए है, ठीक है, उमूमी हुक्म है यानी आम हुक्म, जनरल हुक्म है ये, जो खर्च करने के बाद तकलीफों में परेशान होकर पिछले खर्च किए हुए पर पछताएं, ठीक है, यानी उन मुसलमानों के लिए है कि जिनके ऊपर अगर कोई तकलीफ आ जाए ना तो वो फिर पछताना शुरू कर दें कि हाय क्यों हमने खर्च कर दिया, हमें नहीं खर्च करना चाहिए था, हमें इतना अल्लाह के रास्ते में नहीं देना चाहिए था, अफसोस करना शुरू कर दें, ठीक है, ये उन मुसलमानों के लिए है, यानी ये उमूमी हुक्म है, उमूमी हुक्म से यहाँ पे मुराद ये कि हर एक के लिए नहीं है ये, बल्कि नॉर्मल जो दर्जे के लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। कुरान करीम के लफ्ज महसूरन में इसकी तरफ इशारा मौजूद है, ठीक है, क्योंकि महसूर का जो लफ्ज है ये हसरत से निकला। हसरत, हसरत का मतलब होता है कि आपको किसी चीज के ऊपर नदामत हो रही हो, आपको जो है ना वो पश्चिमानी हो रही हो, अफसोस हो रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो महसूर के लफ्ज से पता चल रहा है कि अगर किसी शख्स को अफसोस और हसरत और नदामत हो रही है ना, तो ये उसके लिए है, जिसको हसरत और नदामत नहीं हो रही है उसके लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि आगे फरमाते हैं कि जो लोग इतने बुलंद हौसला हों कि बाद की परेशानी से ना घबराएं और अहले हुकूक के हुकूक भी अदा कर सकें, उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। अहले हुकूक के हुकूक भी अदा कर सकें, यानी दोनों चीज, ठीक है, कि अगर उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया तो इतने स्ट्रांग हों कि उनको कोई पशिमानी ना हो इस बात के ऊपर कि मैंने क्यों खर्च कर दिया, ठीक है, अफसोस ना हो। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि जिन लोगों के उनके ऊपर हुकूक आते हैं ना, उनके भी हुकूक के अंदर यानी कोई वो ना हो, कमी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर जो घर के मर्द साहब हैं, ठीक है ना, वो तो बड़े जी अहले तकवा हैं और अहले तवक्कुल हैं, माशाल्लाह तबलीग के अंदर जो है वो 4 4 महीने भी निकल जाते हैं और 1 साल के लिए भी निकल जाते हैं, उनको कोई अफसोस नहीं होता कि पीछे क्या हो, यानी मेरे कमाई जो है वो मुतासिर हो गई, उन्होंने अपने पैसे भी जो है वो सारे अल्लाह के रास्ते में दे दिए, ठीक है, तो माशाल्लाह बड़े स्ट्रांग आदमी है भाई, बड़े तवक्कुल वाले हैं भाई। लेकिन उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो ऐसे तवक्कुल वाली नहीं है, उनकी जो औलाद है वो ऐसी तवक्कुल वाली नहीं है, उनके माँ बाप अगर उनके साथ रहते हैं जिनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है वो ऐसे तवक्कुल वाले नहीं है, तो फिर भी ये खर्च नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है ना। सिर्फ अकेला तवक्कुल मुतवक्किल होना काफी नहीं है, ठीक है, अगर आपके घर वालों के हालात ऐसे नहीं है, और मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा घर जो है ना वो मुतवक्किल हो। ऐसा सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना था कि पूरा का पूरा घराना जो है ना वो तवक्कुल वाला था, वरना ऐसे घराने होते नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत में जो है ना फिर आप नहीं खर्च कर सकते, इस तरह से खर्च नहीं कर सकते कि आपके पास कुछ भी बाकी ना रहे। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत ये थी कि कल के लिए कुछ जखीरा ना करते थे, जो कुछ आज आया आज ही खर्च फरमा दिया करते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले कौन थे, उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है, पूरे ईमान वालों की, पूरे यानी ईमान वालों की जमात की माएं, ठीक है, तो वो तो ऐसी थी, तो नबी अलैहिस्सलाम सब कुछ खर्च कर दिया करते थे और बचा के नहीं रखते थे, और बसा औकात भूख और फाके की तकलीफ भी पेश आती, पेट पर पत्थर बांधने की नौबत भी आ जाती थी। और सहाबे कराम में भी बहुत से ऐसे हजरात हैं जिन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको मना फरमाया, ना इस अमल को उनके मना फरमाया, ना उनको मलामत की। इससे मालूम हुआ कि इस आयत की ममानियत उन लोगों के लिए है, यानी इस आयत में जो ममानियत आई है, जो जो फोरबिडेंस आई है, वो उन लोगों के लिए है जो फक्र व फाके की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकें और खर्च करने के बाद उनको हसरत हो कि काश हम खर्च ना करते। ये सूरत उनके पिछले अमल को फासित कर देगी, इसलिए इससे मना फरमाया गया। ठीक है, अगर आपने कोई नेकी का काम किया और बाद में आपको अफसोस हो रहा है उस नेकी के ऊपर ना, तो इससे वो नेकी का काम फासिद हो जाता है, ठीक है, उस नेकी का सवाब जो है वो जाया हो जाता है अगर नेकी करने के बाद उसके ऊपर अफसोस हो रहा हो, ठीक है। जिस तरह गुनाह करने के बाद उस गुनाह के ऊपर नदामत अगर हो रही है तो फिर तो अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे उस गुनाह को, ठीक है, तौबा कर ली, नादिम हो गया, अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। लेकिन गुनाह करने के बाद उसके ऊपर खुश हो रहा है कि मैंने कितना जबरदस्त काम किया, कैसे फलाने शख्स को मैंने उल्लू बनाया, कैसे मैंने उसको जो है ना वो जलील और रुसवा किया, कैसे मैंने उसका दिल जलाया, कैसे मैंने उसको तकलीफ पहुंचाई, है ना, ये खुश हो रहा है गुनाह करने के बाद, किसी को तकलीफ पहुंचा के आ रहा है और खुश हो रहा है उसके ऊपर। तो इससे जो गुनाह है ना वो बढ़ जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से नेकी के बाद अफसोस करने के बाद नेकी का सवाब खत्म हो जाता है, यही फरमा रहे हैं कि अमल को फासिद कर देगी, इसलिए इससे मना फरमाया गया है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो खुद खुद तो बहुत बुलंद हौसला थे और बहुत ही यानी आप बर्दाश्त कर लेते थे इस तरह की सूरत हाल को। लेकिन फिर ये आयत नबी अलैहिस्सलाम के जिंदगी के एक वाकये को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने नाजिल क्यों फरमाई? उम्मत के लिए, ठीक है, उम्मत की तालीम के लिए, सही है। तो आप नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है ना वो एक क्या कहते हैं, इसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम को खुद तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके अंदर यानी नबी अलैहिस्सलाम को कोई अफसोस नहीं था इस बात का कि मैंने क्यों दे दिया, लेकिन नमाज के लिए जाना ये एक ज्यादा बड़ी इबादत थी। सदका खैरात जो है वो दूसरे दर्जे की इबादत है, और फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ना, अगर मस्जिद जो है वो घर के करीब है, अजान की आवाज आपके घर में आती है, तो मस्जिद में जाकर के फर्ज नमाज अदा करना ये वाजिब है, ठीक है, ये वाजिब है। तो ये और ये बड़ा वाजिब है सदका खैरात कर देने से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका खैरात कर दिया, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि जो इससे बड़ा वाजिब था फर्ज नमाज अदा करना मस्जिद में जाकर के, ये छूट गया या छूट रहा था, तो इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस हुआ, ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने क्यों दे दिया, उस पर अफसोस मुतलकन नहीं हुआ, बल्कि इस वजह से उसके ऊपर अफसोस हुआ। अल्लाह ताला ने इसको वजह बना करके आयत नाजिल फरमाई, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि उम्मत की तालीम के लिए ये आयत नाजिल फरमाई, ठीक है ना। और फिर तीसरी चीज जो कि हम उमूमी तौर पर अखज करते हैं इस तरह के मामला से, वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम बेशक बेहतरीन इंसान थे, बेशक कामिल इंसान थे, लेकिन इस्लाह की जरूरत नबी अलैहिस्सलाम को भी थी, जो कि अल्लाह ताला उनके शेख के होने के नाते अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमाते थे कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो लेकिन वैसे नहीं करो, इसी को तो इस्लाह कहते हैं, ठीक है। अगर इंसान कामिल है और बिल्कुल उसको इस्लाह की जरूरत ही नहीं, तो फिर इस्लाह क्यों करेगा कोई, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह अल्लाह ताला ने फरमाई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से ऊंचे अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से पीछे बात होती है कि तरबियत और इस्लाह का काम जो है ना वो बड़े ने करना होता है छोटे के लिए, छोटे ने बड़े का नहीं करना होता वगैरह, इस तरह की बात पहले हो चुकी है। अच्छा, किसी को कोई सवाल है इस कॉन्सेप्ट के बारे में? अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, ठीक है, अगर हो तो फिर आप चैट विंडो के ऊपर लिख के सवाल कर सकती हैं। आगे चलते हैं कि खर्च में बदनज़मी ममनू है। असल बात यह है कि इस आयत ने बदनज़मी के साथ खर्च करने को मना किया है कि आगे आने वाले हालात से कतई नजर करके जो कुछ पास है उसे उसी वक्त खर्च कर डाले। कल को दूसरे साहिब हाजत लोग आए और कोई दीनी जरूरत अहम पेश आए तो अब उसके लिए कुदरत ना रहे, ठीक है। यानी खर्च में जो जो इंतजाम करना, जो जो प्लानिंग करना है ना, उसकी भी नीयत क्या होनी चाहिए? उसकी नीयत जो है ना वो ये नहीं होनी चाहिए कि कल जो है ना मैं ज्यादा तफरी करूंगा, ज्यादा जो है ना मैं यानी अपनी ख्वाहिश को पूरी करूंगा, और मैं ज्यादा जो है वो मजे के खाने खाऊंगा, और ज्यादा जो है वो मजे के जो है ना वो गेम खेलूंगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं खर्च में तंगी, इसलिए नहीं खर्च के अंदर जो है वो यानी सोच समझ करके खर्च करो, बल्कि इसलिए सोच समझ करके खर्च करो, नीयत क्या होनी चाहिए कि कल को कोई ज्यादा अहम जरूरत पेश आएगी ना, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कुछ भी ना बाकी बचाओ, ठीक है, और मुझे कोई अफसोस वाली कैफियत मेरे अंदर शैतान पैदा करते, ठीक है ना। देखें, अपने ऊपर एतमाद का तो वैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे दीन के अंदर, एतमाद तो होता है अल्लाह ताला के ऊपर, ठीक है, कि भाई अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे मुश्किल सूरत हाल से बचाएंगे, सही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये वाली भी फिक्र इंसान और एक मुसलमान के अंदर चलती रहनी चाहिए कि अपने आप को जो है ना वो शैतान से महफूज ना समझे, अपने आप को शैतान से महफूज ना समझे, कि ये ना समझे कि नहीं शैतान मुझे बहका नहीं सकता, शैतान जो है ना वो मेरे दिल के अंदर कोई बुरा ख्याल पैदा नहीं कर सकता, नहीं, ये जो है ना यानी तकब्बुर कहलाता है, ठीक है। ये अपने आप को बहुत ही कोई बड़ा आलीशान किस्म का नेक मुत्तकी परहेजगार समझना कि नहीं शैतान मुझे नहीं बहका सकता, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों सूरतों के दरमियान, इन दोनों कैफियतों के दरमियान एक एतदाल रख करके चलना होता है। अल्लाह पर एतमाद भी रहे लेकिन अपने आप को शैतान से महफूज भी ना समझे, ठीक है। तो कोई ऐसा अमल इंसान ना करे कि जिसको के बहाना बना करके कि ना शैतान इसको खराब कर सके, या इसके घर वालों को खराब कर सके, इसकी औलाद को खराब कर सके, ठीक है। तो हरगिज हरगिज शैतान से गाफिल ना हो, जहां अल्लाह की याद से गाफिल ना हो वहीं शैतान मर्दूद से भी गाफिल ना हो। दुश्मन से गाफिल नहीं होना चाहिए, दुश्मन से जो भी गाफिल होता है ना वो फिर दुश्मन के हाथों मार खाता है, ठीक है। तो शैतान हमारा दुश्मन है, अल्लाह ताला हमें बार बार शैतान की याद दिलाते हैं ना अपने कुरान मजीद के अंदर। तो क्यों याद दिलाते हैं? ताकि हम शैतान से अपने आप को कभी भी महफूज ना समझें, हमेशा जो है वो उससे यानी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते रहे उससे बचने के लिए। किसी ने यहाँ पे लिखा है कि ये उम्मत को सिखाने के लिए किया होगा ना, कि उम्मत को ये मालूम हो, ये ना जो आपने लिखा है ना इस वजह से मैंने ये पढ़ दिया इस तरह से, ये उम्मत को सिखाने के लिए किया गया होगा कि उम्मत को ये मालूम हो कि इस्लाह होना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये तो अंबिया की भी हुई है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार अपने नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह फरमाते हैं, कोई एक जगह पे नहीं। और यहाँ पर तो हमने बड़ा यानी समझ लें कि इशारा लेकर के हमने यहाँ पे इस्लाह की बात रखी है ना, कि नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने इस्लाह करी, लेकिन सराहतन इस्लाह की भी शक्लें कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सराहतन बिल्कुल क्लियर, जिसके अंदर डाउट बिल्कुल भी बाकी ना बचे, है ना। अबसा वतवल्ला अंजा अहुल आमा वमा युद्रिका अल्लाहु यज़्ज़का अव यतज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्तहु तसद्दा, सूरह अबसा वतवल्ला उठा करके देख लें। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो और भी आयात मौजूद है कुरान मजीद के अंदर, है ना। या आपने ऐसा क्यों किया, और जो है वो अगर आप जो है वो जरा भी झुके काफिरों की तरफ तो आपको कोई जो है वो वली और नसीर नहीं मिलेगा। बड़े सख्त अल्फाज में भी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह फरमाई है, ठीक है ना। तो उम्मत को ये बात पता चल जाए कि भाई ये इस्लाह होना जो है ना ये तो मोहब्बत की निशानी है, ये तो फिक्र की निशानी है। आप अपने बच्चे की जो इस्लाह करती हैं तो आप उससे नफरत की वजह से इस्लाह करती हैं, उसको जलील करने की वजह से इस्लाह करती हैं, नहीं बल्कि उसको नुकसान से बचाने के लिए। क्यों नुकसान से बचाने के लिए? क्योंकि आपको मोहब्बत है अपनी औलाद से, राइट। तो इस्लाह करना ये तो मोहब्बत की निशानी है, और ये तो छोटे के लिए खुश होने की बात है कि मेरे बड़े ने मेरी इसलाह कर दी है। इसके ऊपर नाराज होना, इसके ऊपर जो है वो अपनी यानी हतक महसूस करना कि ओ मुझे जलील कर दिया, मुझे रुसवा कर दिया, दूसरों के सामने मेरी इसलाह कर दी। नबी अलैहिस्सलाम की इसलाह अल्लाह ताला पूरी इंसानियत के सामने कर रहे हैं। कुरान मजीद पूरी इंसानियत के सामने खुला हुआ है, सारे मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के छोटे पढ़ेंगे इसको। हमारी इस्लाह कोई हमारे छोटों के सामने कर दे तो कितना बुरा लगता है, और नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह किसके सामने अल्लाह ताला कर रहे हैं? सारे छोटों के सामने, क्योंकि उम्मती तो सारे नबी अलैहिस्सलाम से छोटे हैं ना, राइट। छोटों के सामने अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह फरमा रहे हैं। तसव्वुर करें नबी अलैहिस्सलाम का भी क्या हौसला होगा, क्या हौसला पाया था अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। सारे छोटों के सामने इस्लाह हो रही है, किसी बड़े के सामने इस्लाह नहीं हो रही, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई है ही नहीं, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के बराबर कोई नहीं है। बराबर वालों के सामने भी इस्लाह होती है ना तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, छोटों के सामने इस्लाह तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है बर्दाश्त करना, ठीक है भाई। इस्लाह तो चूंकि मसल मकसद इस्लाह का जिसके समझ में आ जाए ना फिर वो उसको बुरा नहीं मान सकता उसके ऊपर। अच्छा, किसी और ने लिखा शैतान का वार बहुत ज्यादा है। जी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हम लोग की हिम्मत खत्म हो जाती है। हाँ, बैलेंस रखने की बात करी थी, शैतान का वार बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बैलेंस, मायूसी की तरफ नहीं जाना, बल्कि ये भी याद रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत शैतान से भी ज्यादा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहना, ये जो है ना शैतान के वार से बचने के लिए अक्सीर नुस्खा है। अक्सीर नुस्खा यानी वो नुस्खा जो कि कभी नाकाम नहीं होता। जो बंदा अल्लाह के सामने रोता रहता है, अल्लाह के सामने जो है ना वो यानी अपने आप को पेश करता रहता है, और एतमाद अपने ऊपर करने की बजाय अल्लाह के ऊपर करता है कि अल्लाह ताला के पास ताकत है कि वो मुझे माफ कर दें, अल्लाह ताला का हिल्म है कि मुझे माफ कर दें, ऐसा बंदा जो है ना वो शैतान से यानी मार खाने के बावजूद नाकाम नहीं होता, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा रहा है ना। ठीक है, तो बेशक शैतान का वार ऐसा है कि जिससे हम अपने आप कभी महफूज नहीं समझ सकते, लेकिन जो अपने आप को मिटा करके अल्लाह के सामने पेश करता है उसको ये शैतान, या तो ऐसे बंदे को शैतान बहका ही नहीं सकता, या अगर बहका भी देते हैं ना तो झट ये अपनी माफी करवा लेता है फौरन। ये जो है ना वो अल्लाह ताला से ऐसे तौबा करता है, ऐसे तौबा करता है कि इसके गुनाह माफ होना तो क्या इसके गुनाह नेकियों में तब्दील कर दिए जाते हैं, है ना, उल्टा, यानी कि इसके लिए फायदा हो जाता है, गुनाह नेकी में तब्दील हो जाते हैं, है ना। सूरह फुरकान की जो आखिरी आयात है ना उसके अंदर, युबद्दलुल हसनात सय्यात सय्यातुल हसनात, क्या है वो आयत मुझे याद नहीं है। ठीक है, अच्छा किसी और ने लिखा, और अगर औरत तबलीग में या सह रोजे पे जाए जिससे उसका शौहर नाराज हो और कहे कि हमारे बाप ने कभी ये काम नहीं किया, हमारे बाप ने कभी ये काम नहीं किया, तो ये नहीं करना है, तो ये नहीं करना है, तो अगर औरत तबलीग में ये या सह रोजे पे जाए जिससे उसका शौहर नाराज हो और कहेगे जी इस तबलीग की कोई गुंजाइश नहीं है कि शौहर नाराज हो रहा है और आप तबलीग में जा रही हैं, तबलीग पे जाना फर्ज नहीं है, सहरोजे पे जाना फर्ज नहीं है, ठीक है ना, और शौहर को राजी रखना ये फर्ज है अल्लाह के नाफरमानी की सूरत में फर्ज नहीं है, वो तो शौहर को अल्लाह की नाफरमानी में नहीं राजी रख सकते, लेकिन तबलीग में निकलना, सहरोजे पे निकलना, ठीक है ना, ये चाहे जितने भी नाराज होते हो तबलीगी भाई और तबलीगी सो कॉल्ड बुजुर्ग, ये फर्ज नहीं है, हो जाओ तुम नाराज, तुम्हारी हमने रजा कोई नहीं हम कमानी है, ठीक है ना, ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ठीक है, तो शौहर की नाराजगी की सूरत में आप बिल्कुल तबलीग में नहीं निकल सकते, बिल्कुल तबलीग में नहीं निकल, और कोई जरूरत नहीं है तबलीग में निकलने का आपको, इस सूरत में शौहर के साथ निकले या शौहर की कंप्लीट पार्टिसिपेशन के साथ निकले, अगर शौहर खुद नहीं भी निकल रहा है, महरम औरतों के साथ और दूसरे महरम मर्द के साथ, सॉरी मतलब औरतों के साथ और दूसरे महरम मर्द के साथ निकले, पहली बात तो महरम मर्द के बगैर तो सफर ही जायज नहीं है, महरम मर्द के बगैर तो सफर ही जायज नहीं है, ये तबलीग किधर से आ गई, ठीक है, ठीक है, चीजों को उनके मकाम पे रखें। सबसे बड़ा बड़ा मसला हमारा यही है कि हम बे इंतहा इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन बुनियादी तरीन इल्म जो है ना कि हर चीज को उसके मकाम पर रखना, ये इल्म हासिल नहीं करते, हर चीज को ही हमने उल्टा उठा करके जो है ना वो उसके मकाम से हटा करके किसी और मकाम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है भाई, तबलीग का एक काम है, नेकी का काम है, उम्मत के अंदर जो है वो इसलाह का काम है, लेकिन इसको आप उसके मकाम से उठा करके इधर रख दें कि जी शौहर जो है वो नाराज हो रहा है और आप तबलीग पे निकल रही हैं, सहरोजे पे निकल रही हैं, ठीक है, ये नहीं, हद होती है हर चीज की, वो भी तो बेड़ा गरक हुआ है सारा का सारा, जिसको कहते हैं ना आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, इसी किस्म की हरकतों की वजह से। चले आगे, फरमाते हैं कि असल बात यह है कि इस आयत ने बदनज़मी के साथ खर्च करने को मना किया है कि आगे आने वाले हालात से कतई नजर करके जो कुछ पास है उसे उसी वक्त खर्च कर डाले, कल को दूसरे साहिब हाजत लोग आए और कोई दीनी जरूरत अहम पेश आ जाए तो अब उसके लिए कुदरत ना रहे, या अहल आयाल जिनके हुकूक उसके जिम्मे वाजिब हैं उनके हक अदा करने से आजिज हो जाए। ठीक है, मलूमा महसूरा के अल्फाज के मुतालिक तफसीर मजहरी में है कि मलूम का ताल्लुक पहली हालत यानी बुखल से है कि अगर हाथ को बुखल से बिल्कुल रोक लेगा तो लोग मलामत करेंगे, और महसूरात का क्या, और एक मिनट, अच्छा पेज चेंज कर रहे हैं, पेज चेंज करना है ना, जूम पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि नाराज हो गया। हाँ तो अगर अपने आप को बिल्कुल अपना अगर हाथ को बुखल से बिल्कुल रोक लेगा, यानी बुखल करेगा और हाथ को बिल्कुल रोक लेगा तो लोग मलामत करेंगे, यानी ये तो बहुत ही कंजूस मक्खी चूस और ऐसा है वैसा है, बिल्कुल ही खर्च नहीं करता तो लोगों से भी इसको मलामत मिलेगी, ये भी अच्छी बात नहीं है, अगरचे के नेकी के काम के अंदर लोगों की मलामत की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। नेकी के काम में जो कि प्रोविन नेकी है कुरान और हदीस से, शरीयत से, उसमें तो लोगों की मलामत की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। कि भाई पर्दा कर रही है ना, तो अब सारे जाहिर खानदान वाले मलामत करेंगे, अब्बा भी मलामत, बहुत सारी जगहों पे अब्बा भी मलामत करते हैं, अम्मा भी मलामत करती हैं, खाला पुप्पो चाचू और मामू सारे के सारे दुश्मन हो जाते हैं जब लड़की पर्दा करना शुरू करती है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, ठीक है ना। मामू नाराज हो कि अम्मी नाराज हो कि अब्बू नाराज हो, अल्लाह का हुक्म तो पूरा करना है, उसमें मलामत की फिक्र नहीं करनी। लेकिन जो काम अल्लाह ताला को नापसंद है उसके अंदर अगर लोग मलामत कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों की मलामत की भी परवाह करें, ठीक है। तो यही बुखल जो है ये अल्लाह ताला को भी नापसंद है, तो उसमें लोगों की मलामत की भी फिक्र करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है, ठीक है। अच्छा क्या क्या लिख रही है अब आप, घर की सीक्रेट्स जो है यहाँ पे उठा करके सबको बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना, कुछ तो सीखना पड़ेगा जूम को भी। बहरहाल यही बात मैं अपनी भाभी को समझाई, मगर भाई कह रहे हैं कि बेगम नहीं सुन रही, मैं क्या करूं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें बेगम साहिबा जो है वो अपने आखिरत के अजाब से डरें, ठीक है ना। वो ये नफ्स परस्ती है, ये तबलीग नहीं है, ठीक है ना। ये नफ्स परस्ती है और ये जहालत है, ये बिल्कुल शरीयत से जहालत की वजह से लोग इस सब की हरकतें करते हैं, ठीक है। जो उनको लेके जा रहे हैं उनको भी तो कुछ फिक्र करनी चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, या तो उन्होंने छुपाया हुआ होगा। आमतौर पर ऐसे ही होता है कि लोग ऐसी नेकियां जो है ना वो बड़ों को बताते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कि घर में उनको क्या हंगामे हो रहे हैं और क्या मसला हो रहा है, ताकि बड़ों को बता देंगे तो वो मना कर देंगे भाई कि नहीं आप शौहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस छुपा कर गए हैं बस, वो तो यानी ये एक बेसिकली जो है ना ये वो है, क्या कहते हैं, यानी एंटरटेनमेंट है ये दीन नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। खैर अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो रोक लेगा तो लोग मरामत करेंगे, और महसूरन का ताल्लुक किसी दूसरी हालत से है कि खर्च करने में इतनी ज्यादती करे कि खुद फकीर हो जाए, तो ये महसूरा यानी थका मांदा आजिज या हसरत ज़दा हो जाएगा, ठीक है। बात हो चुकी है इसके ऊपर काफी के, यानी अगर नेकी करने के बाद अफसोस हो रहा है तो वैसे ही नेकी जाया कर दी ना इसने, तो फिर इस तरह से नेकी ना करे। अच्छा इसमें जो एक दो पॉइंट्स थे रह गए थे पीछे के खुलासे तफसीर में, हजरत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, तो इसको या जिस फिर से आपके सामने रखना चाह रहा था कि इसमें हजरत ने लिखा था कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नहु काना बे इबादिही खबीरम बसीरा, ठीक है। तो इसका तर्जुमा खुलासे तफसीर में लिखा था कि बेशक वो अपने बंदों की हालत और उनकी मसलहत को खूब जानता है, देखता है, ठीक है। यानी अब इसकी तफसीर में लिखते हैं के सारे आलम की हाजात पूरा करना तो रब्बुल आलमीन ही का काम है, तुम इस फिक्र में क्यों पड़ते हो, तुम इस फिक्र में क्यों पड़े कि अपने से हो सके या ना हो सके अपने आप को मुसीबत में डालकर सबकी हाजतें पूरी ही करो। ये सूरत इसलिए बेकार है कि ये सब कुछ करने के बाद भी सबकी हाजतें पूरी कर देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का गम ना करे, उसके लिए तदबीर ना करे, बल्कि मतलब ये है कि सबकी हाजतें पूरी करना किसी इंसान के बस में नहीं, ख्वाह वो अपने ऊपर किसी कितनी ही मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी हो, कि ये काम तो सिर्फ मालिक के कायनात ही का है कि सबकी हाजतों को जानता भी है और सबकी मसलहतों से भी वाकिफ है कि किस वक्त किस शख्स की किस हाजत को किस मकदार में पूरा करना चाहिए। इसलिए इंसान का काम तो सिर्फ इतना ही है कि मियाना रवि से काम ले, ना खर्च करने के मौके में बुखल करे और ना इतना खर्च करे कि कल को खुद ही फकीर हो जाए और अहलो आयाल जिनके हुकूक उसके जिम्मे हैं उनके हुकूक अदा ना हो सकें और बाद में पछताना पड़े, ठीक है। तो ये जो है ना पेज नंबर 472 पर था, अगर एडमिन साहिबा जो है वो पेज 472 जरा सा स्क्रीन पे ले आए, बेशक इससे मेरा जूम जो है ना वो सारा उलट पुलट हो जाए, लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि जब आप स्क्रीन शेयरिंग चेंज करती है ना तो चैट विंडो बंद हो जाती है, पार्टिसिपेंट विंडो जो है वो टूट जाती है, लेकिन आप फिर भी कर लेगा, अल्लाह को जदा खैर। चले ठीक है। पेज नंबर 472 के ऊपर खुलासा तफसीर में हजरत ने ये वाली बात लिखी थी खर्च करने से मुताल्लिक। ठीक है, अच्छा ये किस चीज को खर्च करने से मुताल्लिक बात हो रही है? ये माल को खर्च करने से मुताल्लिक बात हो रही है। ठीक है, माल यानी जो जो करेंसी होती है आपके पास, या सोना चांदी, मॉनिटरी। ठीक है, जो मॉनिटरी नेमत अल्लाह ताला की दी हुई है उसको खर्च करने से मुताल्लिक ये बात हो रही है। ठीक है, कि ना बहुत ज्यादा खर्च करो ना जो है वो बहुत कम खर्च करो, ऐसा ना हो कि तुम मलूम मसूरा महसूरा रह जाओ और जो है वो तुम्हारे अहले हक जो लोग हैं ना उनका नुकसान हो जाए। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है, माल को खर्च करने से मुताल्लिक इस आयत के अंदर ये फरमाया गया है। ठीक है, लेकिन इससे अगर हम एक इशारा लें, एक इशारा लें, ठीक है, वो ये कि जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत इंसान के पास वो माल है, उसी तरीके से अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत, बल्कि माल से भी ज्यादा बड़ी नेमत, वो क्या है? इल्म। ठीक है, इल्म, राइट, बल्कि इल्म नाफे, इल्म नाफे, क्योंकि ये आजिज जो बात करना चाह रहा है वो इल्म नाफे से मुताल्लिक है। यहाँ पर इल्म से मुराद यहाँ पर मेरी वो नहीं है कि जी बस फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला इल्म, वो भी है अल्लाह की नेमत, ये है कि इंसान को जरा ज्यादा मालूमात हासिल होती हैं। ठीक है ना, तो वो मालूमात जो है वो दूसरों को सिखाता है, पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन ये आजिज जो बात करना चाह रहा है वो इल्म नाफे से मुताल्लिक बात करना चाह रहा है, जिसको के दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? हिदायत। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म नाफे अता फरमाया है, मुनाफा यानी आखिरत का मुनाफा हासिल करने वाला इल्म अता फरमाया। ठीक है, इसको हिदायत भी कहते हैं, क्योंकि हिदायत का मतलब यही है ना कि आपको पता हो कि जी सीधा रास्ता क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, कैसे मैंने अल्लाह को राजी करना है, कैसे मैंने जो है वो जन्नत तक पहुंचना है, इसी को तो हिदायत कहते हैं, इसी को इल्म नाफे भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम यही उसूल जो कि माल के ऊपर अप्लाई होता है, वही उसूल इल्म नाफे यानी हिदायत के ऊपर भी अप्लाई करें, तो भी बात पूरी की पूरी सच बैठती है, पूरी की पूरी उसके ऊपर फिट बैठती है। वो क्या भाई, तुम दूसरों को हिदायत का इल्म पहुंचाने में अपने आप को मुसीबत में मत डालो। कौन सी वाली मुसीबत में? क्योंकि यहां पर हिदायत की बात हो रही है ना, तो दूसरे को हिदायत का इल्म पहुंचाने में तुम अपने आप को मुसीबत ना डालो, इसका क्या मतलब होगा? कोई आप में से अगर थोड़ा सा सोच के इसके ऊपर जवाब दे कि माल दूसरों के ऊपर इतना ज्यादा खर्च मत करो कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए। क्या मतलब? कि तुम्हारे पास माल कम हो जाए, राइट? दूसरों के ऊपर अपना माल इतना मत खर्च करो कि तुम्हारे पास माल इतना कम हो जाए कि कल को तुम जो है वो मलूमा महसूरा हो जाओ, है ना? अगर यही बात हम हिदायत के ऊपर अप्लाई करते हैं कि भाई हिदायत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, तो हिदायत को दूसरों के ऊपर इतना मत खर्च करो कि तुम मलूमा महसूरा हो जाओ, तुम मुसीबत में पड़ जाओ, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या है, क्या इल्म नाफे दूसरों पर खर्च करने से वो कम हो जाता है? इल्म तो ऐसी चीज है जो कि दूसरों पे खर्च करने से कम नहीं होती, वो तो बढ़ जाती है। इल्म तो पढ़ाने से बढ़ता है, इल्म तो बांटने से बढ़ता है, लेकिन एक उसकी भी सूरत है कि मुसीबत में इंसान पड़ जाए, दूसरों को हिदायत का इल्म बांटने में खुद मुसीबत में पड़ जाए, तो उसकी क्या सूरत हो सकती है, कैसे होता है ऐसा? ठीक है जी, आपने जवाब लिखा कि अपने फराइज छोड़ने नहीं है और दूसरों को तबलीग, अपने फराइज छोड़ने नहीं है और दूसरों को तबलीग कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, भाभी वाली मिसाल भी इसके अंदर आ गई। ठीक है ना, अगरचे कि आपने लिखने में जरा गलती कर दी है, लेकिन भाभी वाली मिसाल जो पीछे अभी बात हुई थी वो भी आ गई इसके अंदर। ठीक है, कि दूसरों को तबलीग करने के में जो है ना वो जो अपने ऊपर फर्ज था उसी को छोड़ दिया, है ना? तबलीग करने निकल रहे हैं, नमाज कजा हो रही है, तबलीग करने निकल रहे हैं, शौहर नाराज हो रहा है, तबलीग करने निकल रहे हैं, शौहर नाराज हो रहा है, ये क्या है? ये यही चीज है कि हिदायत बांटने के लिए निकल रहे हैं, बजाय इसके कि अपना फायदा हो अपना नुकसान अपने आप में मुसीबत में डाल दिया। किसी और ने लिखा, क्योंकि सब डायरेक्ट मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं तो इस वजह से जाहिर है नाम तो नहीं लेंगे हम कि कौन किसने क्या लिखा। तो किसी और ने लिखा कि इसका मतलब अपना फर्ज अमल छोड़ कर दीन की तालीम देना, यानी दीन की तबलीग करने में अपने शौहर और माँ बाप को नाराज करना। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि औरत के ऊपर दीन की तबलीग फर्ज है ही नहीं, औरत के ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है ना, कि तबलीग के लिए जो घर से बाहर निकले। हाँ, घर वालों के ऊपर भी जो है करना, वो भी फराइज के दर्जे में नहीं आता है, लेकिन ठीक है, अहम है, जरूरत है, लेकिन घर से बाहर निकल करके ये तो उसके लिए तो माँ बाप की इजाजत के बगैर भी नहीं जा सकती। ठीक है, अगर शादी गैर शादीशुदा है तो माँ बाप की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती, शादीशुदा है तो शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती। तो अगर हिदायत का इल्म बांटने के लिए जा रही है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, अल्लाह के उन बंदों की नाफरमानी कर रही है जिसकी फरमाबरदारी इसके ऊपर लाजमी है, तो अपना अपने आप को मुसीबत में डाल रही है ना। ठीक है, अच्छा, और वो इल्म खर्च करते हुए खुद कोई गुनाह में ना लगे, फराइज ना छोड़े। ठीक है, सही है, यही बात हो गई। और जैसे अभी किसी ने कहा कि तबलीग पे औरतों को जाना शौहर की मर्जी के खिलाफ, तो वो खुद मुसीबत में पड़ गई, घर का सुकून खत्म। बिल्कुल सही, ठीक है ना, वही भाभी वाली मिसाल जो साजिद ने कही थी, घर का सुकून भी खत्म हुआ और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी खराब हो गया इसका, क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर की फरमाबरदारी जो है वो उसके ऊपर लाजिम करी थी। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद हैं इसके ऊपर, और इसने जो है ना वो अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। तो आगे क्या लिखते हैं कि हमारे अंदर रूहानी बीमारी पैदा ना हो, सबका हक अदा हो। जी, जाहिलों पर वक्त जाया करना, माशाल्लाह, क्या जबरदस्त आपने यानी बहुत अच्छी सूरत आपने बयान करी है कि ऐसे लोगों के ऊपर वक्त लगाना इल्म पढ़ाने के लिए और हिदायत समझाने के लिए जो कि नाकदरे हैं। जाहिलों से मुराद यहाँ पर क्या है, नाकदरे, नाकदरी करने वाले, नाशुक्रे लोग। ठीक है ना, क्योंकि जाहिल मुतलकन का मतलब होता है जिसके पास इल्म नहीं है। तो भाई आप किसको इल्म पढ़ाते हैं, आप किसको इल्म सिखाते हैं जिसके पास इल्म नहीं है। ठीक है ना, तो जाहिलों का लफ्ज अगर बेइल्म के ऊपर इस्तेमाल किया के मानों में लिया जाए तो फिर तो बात सही नहीं है आपकी, क्योंकि इल्म तो पढ़ाया ही या इल्म तो सिखाया ही जाहिल को जाता है। यहां पर जाहिल की मुराद क्या है, नाकदरा। ठीक है ना, यानी जो कि जिसको कि कोई कदर ही कोई नहीं, जिसको कि बिल्कुल कोई एहसास ही नहीं, और जिसको जो है ना वो यानी इस किस्म के जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर शुरू में आपने कोशिश करनी होती है, लेकिन अगर अंदाजा हो गया कि भाई ये तो बिल्कुल ही जो है ना ये तो यानी फ्लैट किस्म का इंसान है, जिसको कहते हैं ना चिकना घड़ा। ठीक है, तो ऐसे चिकने घड़े के ऊपर फिर वक्त जाया ना करें। ठीक है, इसके ऊपर जो आप डालेंगे ना ये फिसल करके नीचे चला जाएगा, इसको कहते हैं चिकना घड़ा। ठीक है, वैदा खाता भूल जाहिलूना कालू सलामा। नहीं, वो तो इल्म पढ़ाने वाला कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है ना, आप हर आयत को आप हर जगह तो नहीं फिट कर सकते ना, वो तो दूसरा वाला कॉन्टेक्स्ट है कि अगर वो आपके साथ बदतमीजी करते हो तो उनको जो है वो सलाम कह करके वहां से रुख्सत हो जाएगी। वहां पे यानी दावत और तबलीग वाला कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है ना इस वाली आयत का। हमारे अंदर रूहानी बीमारी। हाँ, एक और जो सूरत है ना जो कि आजकल बहुत ज्यादा एक्चुअली दुनिया के अंदर राइज हुई भी है, वो क्या है कि लोगों को दीन पर लाने के लिए जो है ना, पहले तो गलती ये होती थी कि तबलीग करने वाले, अब मैं तबलीग जमात की बात नहीं कर रहा, किसी भी तबलीग करने वाले को, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो तबलीगी जमात वाला हो, अपने फराइज कदा हो जाते थे। ठीक है ना, इंसान खुद जो है वो उस किस्म का कोई यानी हुकूक अलबात का ख्याल नहीं रख पाता था, लेकिन इस वक्त जो है ना वो ये चीज अगले दर्जे को पहुंच चुकी है, ये चीज और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वो क्या कि अगले बंदे को कि वो आ जाए इस्लाम के अंदर, वो आ जाए जो है ना वो दीनदारी की जिंदगी में आ जाए, तो उसके लिए इस वक्त कौन सी वाली संगीन गलती मुसलमान कर रहे हैं, वो ये है कि वो दीन को हर एक के लिए काबिले कबूल बनाने के लिए दीन को ही बदलने की कोशिश शुरू कर दी, और कर रहे हैं बड़े खुल करके कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गोरों है ना, अमेरिका को दीन पे लाना तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ना इस वक्त दुनिया वालों की, है ना, मुसलमानों की, कि भाई अमरीकी और यूरोपियन जो है ना, गोरे जो है ना, ये आ जाए दीन के ऊपर, ठीक है। तो अब गोरे साहब जो है वो मौसीकी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अमरीकी जो है ना वो उनके लिए म्यूजिक जो है ना वो, यानी वो तो रूह की गजा है उनके लिए, ठीक है। तो अब जो है ना वो जो तबलीग करने वाले हजरात हैं, मैं तबलीगी जमात की यहाँ बात नहीं कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बहरहाल इस किस्म की हरकतें नहीं कर रहे हैं ज्यादातर, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं सो कॉल्ड स्कॉलर्स, ठीक है ना, या सो कॉल्ड जो है वो दीन के वर्कर्स, ठीक है, जो के अपने वीडियोस के अंदर और अपने जो है वो मैसेजेस के अंदर म्यूजिक को डाल रहे होते हैं, ठीक है ना। म्यूजिक के बगैर जो है ना वो, आप देखें डॉक्टर इसरार अहमद के आजकल बयान लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही होती है, क्यों, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर जो है वो उसके अंदर तासीर पैदा नहीं होती क्या, कि उनके अल्फाज जो है वो सुनने वालों को समझ में नहीं आएंगे, ये बैकग्राउंड म्यूजिक तुमने क्यों डाली है। अच्छा डॉक्टर इसरार अहमद तो चलो फिर वो दूसरे थोड़ा सा है, यानी हमारे अपने जो अकाबिर उलमाए कराम है उनकी वीडियोस के पीछे जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाली हुई होती है, क्यों भाई, ये असल में क्या हो रहा है, ये या तो जानबूझ के जो शैतान होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, फैला जो हो रहे हैं वो अकाबिर का बयान फैला रहे हैं, लेकिन पीछे मौसीकी क्यों डाल रहे हैं, इस नीयत के साथ डाल रहे हैं कि मौसीकी लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज बन जाए, एक्सेप्टेबल चीज बन जाए, दुनियादारों के लिए तो वो है एक्सेप्टेबल, अब किसके लिए एक्सेप्टेबल बना रहे हो, दीनदारों के लिए एक्सेप्टेबल बना रहे हो इसको, दीनदारों के लिए एक्सेप्टेबल बना रहे हो, राइट। तो ये शयातीन है, ये दीन का काम करने वाले नहीं है, ये शैतान है जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो है वो बयानात की वीडियोस बना बना करके इंटरनेट के ऊपर वायरल कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से पता है, शैतान जाहिल नहीं है, पता है आपको ना, शैतान जाहिल नहीं है, शैतान तो बहुत बड़ा आलिम है, बल्कि आरिफ भी है, उसको तो पहचान भी है अल्लाह ताला की भी और बंदों के मिजाज की पहचान है उसको, उसको पता है कि जब मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इन मैसेजेस को भेजूंगा ना, कितना ही अच्छा पैगाम क्यों ना हो उसके अंदर, म्यूजिक की नजासत की वजह से वो पैगाम बिल्कुल बेअसर हो जाएगा, उसको पता है कि इन इन बातों को सुन करके सुनने वालों को कोई फायदा नहीं होगा, उसको पता है कितनी अच्छी बात हजरत जी ने करी भी हो या पता नहीं किसी और दूसरे शेख साहब ने करी भी हो, लेकिन चूंकि गुनाह की नजासत जो कि म्यूजिक एक गुनाह है उसकी नजासत इसके साथ मिल गई ना, अब ये खैर की बात नापाक हो चुकी है, अब इसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको कोई परवाह नहीं है कि लोग जो है वो खैर की बात सुने, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको पता है म्यूजिक की वजह से खैर की बात जो है ना वो अब नापाक हो चुकी है, ठीक है। और इससे बड़ा फायदा उसको क्या हासिल हो रहा है कि म्यूजिक को दीन का हिस्सा बना रहा है, म्यूजिक को दीन का हिस्सा बना रहा है, उसी तरीके से जैसे आपने लिखा इख्तलात है ना, औरतों के जरिए से बेपर्दा औरतें हैं मुंह खोल करके जो है वो कर रही हैं, है? और जो है वो यानी अपनी सुरीली आवाज के अंदर नातें पढ़ रही हैं, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर अशआर, कितने अच्छे अच्छे अशआर होते हैं, लेकिन एक लड़की जब अपनी सुरीली आवाज के अंदर वो नात पढ़ रही होती है तो उससे सुनने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि सरासर नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि जो सुरीली आवाज है औरत की वो सतर है, सतर है, जिस तरह बाल सतर है, जिस्म सतर है, उसी तरह से ये लुचदार आवाज, सुरीली आवाज, ये भी सतर है। तो क्या कर रहा है वो दीन को खराब कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो इस और फिर कुछ तो ये करने वाले शैतान होते हैं जो कि जानबूझ के ये काम कर रहे होते हैं, और बाकी कौन होते हैं, जुहला, जो कि इस बात को समझ नहीं रहे होते हैं और वो उन चीजों को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, कितनी खवातीन है ना, बुर्का मॉडलिंग की जो है वो वीडियोस जो है वो अपने प्रोफाइल पे लगाई हुई होती हैं, अपने स्टेटस के ऊपर लगाई हुई होती हैं, या तो आगे फॉरवर्ड कर रही होती हैं, क्या कर रही हो भाई, तुम बुर्के को तरवीज दे रही हो, बुर्के की इशाअत कर रही हो, या तुम गुनाह कर रही हो, गुनाह कर रही है जब आप बुर्के के कोई वीडियोस जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रही होती है ना, क्योंकि बुर्का फर्ज नहीं है, पर्दा फर्ज है, पर्दा फर्ज है, बुर्का तो पहनने की चीज है, पर्दा करने की चीज है, आपने जब किसी बुर्के पोश खातून की वीडियो बना करके आगे फॉरवर्ड करी है तो आप उसके पर्दे को तोड़ रही हैं, आप उसके पर्दे को तोड़ रही हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सवाल कर लें ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना गुनाह कबीरा। और गुनाह कबीरा जो होता है ना, ये कोई टॉफी नहीं है कि भाई थोड़ी सी कड़वी टॉफी थी, थोड़ी सी जो है ना वो चटखारेदार टॉफी थी, कोई बात नहीं खा ली, जरा सा थू थू करना पड़ जाएगा। नहीं, गुनाह कबीरा का मतलब होता है पिटाई। अब वो पिटाई लगेगी किसी ना किसी शक्ल में, लगेगी घर की बेसुकूनी की शक्ल में पिटाई लगेगी, औलाद की नाफरमानी की शक्ल में पिटाई लगेगी, किसी जिल्लत और रुसवाई की शक्ल में पिटाई लगेगी। ये गुनाह को मजाक मत समझें, गुनाह को मजाक मत समझें, ठीक है? कलरफुल निकाब भी नहीं पहनना चाहिए भाई। निकाब का कॉन्सेप्ट क्या है? पर्दा, छुपाना अपने आप को। तो आप उल्टा जो है वो निकाब को ब्यूटिफाई करके जो है वो अपने आप को और है ना अट्रैक्टिव बना रही है, अपने नकाब को, अपने बुरके को अट्रैक्टिव बनाना, ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ है। इसके पर्दे के उसूल के ये चीज खिलाफ है, ठीक है ना? अब देख लें आप, आजकल जिस तरीके से शैतान और जहन्नम की तरफ तरक्की हो रही है, अब आप बुरके की दुकानों में जाकर के देखें, आपको काला बुरका नजर ही नहीं आएगा, राइट? या एक कलर का, ठीक है, चाहे काला ना हो, ग्रे हो, या इस किस्म का कोई कोई कलर हो, आपको वन कलर बुरका नजर ही नहीं आएगा। या तो बहुत ही शो भड़कीले कलर का बुरका बुरका नजर आएगा, या जो है वो मल्टी कलर बुरके नजर आएंगे। क्यों? जब बुरके की दुकान है तो पर वहां पर ये ब्यूटिफिकेशन क्यों हो रही है? उनको पता है, शैतान को पता है कि इस तरीके से जो है ना मैं बुरका पहनने वालियों से भी जो है वो गुनाह करवा लूंगा। इसी वजह से कलर्स वो इंट्रोड्यूस कर रहा है बुरके की दुकानों के अंदर। आपको एक कलर का बुरका ही नजर नहीं आता, ठीक है? तो ये मसला है भाई, ठीक है? अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या लिख रही है? अगर कोई लेडी ऑनलाइन क्लास ले रही, उसमें अंदेशा है गैर महरम तक आवाज जा सकती है, तो क्या ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं? किस क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जरा बताए ना, सुना तो करें ना गौर से, क्या बात कही थी? लेडी अगर क्लास ले रही है तो क्या लेडी की आवाज सतर है? लेडी की आवाज सतर नहीं है, ठीक है? सुरीली आवाज और लुचदार जिसको कहते हैं वो सतर है, हर आवाज औरत की सतर नहीं होती है, ठीक है? तो भाई वो जो क्लास लेने वाली खवातीन है ना, उनको इतना समझा दिया करें, या उनको इतना पता होना चाहिए कि प्लीज आप जो क्लास पढ़ा रही हैं, जिसके अंदर अंदेशा है कि कोई गैर महरम मर्द आ सकता है, ठीक है ना, या ये कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो हो सकता है हेडफोन ना लगाई हुई हों, हो सकता है घर के अंदर जो है वो स्पीकर चल रहा हो, स्पीकर के ऊपर आपकी आवाज घर के दूसरे लोग भी सुन सकते हो, तो भाई नात पढ़ना मत शुरू हो जाइएगा अपनी क्लास के अंदर, ठीक है? और अपनी क्लास के अंदर जो है ना वो कोई इस किस्म की यानी लुचदार आवाज के अंदर कुछ टीच अपने स्टूडेंट्स को बताना मत शुरू हो जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि नामहरम मर्द भी आपकी आवाज सुन सकते हैं। तो एक जिस तरह एक संजीदा और मतानत वाली आवाज होती है, जिस तरह से कि आप जब बाजार में जाती हैं तो नामहरम बैठा होता है ना दुकान के अंदर, या आप जो है वो किसी और ऑफिस में जाती हैं, या आपको किसी और ऐसी जरूरतन जो है वो किसी गैर महरम मर्द से बात करनी होती है, तो वहां पे आप नात पढ़ना शुरू हो जाती हैं, हमद पढ़ना शुरू हो जाती हैं, या जो है वो कोई सुरीली आवाज के अंदर कोई गाना गाना शुरू हो जाती है, नहीं ना? तो भाई जिस तरह वहां पे आप गाना गाना नहीं शुरू हो जाती, उसी तरह क्लास के अंदर भी गाना गाना मत शुरू हो जाए, ठीक है? तो औरत की आवाज का पर्दा नहीं है, लुचदार आवाज और सुरीली आवाज का पर्दा है। अब इसको चेंज करने की कोशिश ना करें, हमारे अकाबरीन क्लियर हैं इस बात के ऊपर, ठीक है ना? हाँ, एहतियातन जो है वो और बात है कि भाई हाँ किसी बेवकूफ सी औरत है, उसको समझ में नहीं आता तो कब जो है ना वो मैं गाना शुरू हो जाऊंगी और कब जो है वो अपने आवाज को मैं नॉर्मल कर लूंगी, तो वहां पर एहतियातन जो है मना करते हैं कि भाई आप ना करें इस तरह की चीजें कि जिसके अंदर के एहतमाल हो कि आपकी आवाज सतर बन करके जो है वो गैर महरम तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिर उसको उलमा को देखना पड़ता है कि जरूरत की के दर्जे में जहां तक जो है वो आप गुंजाइश ले सकते हैं, और फिर बाकी जो है वो जो गैर जरूरी चीज है वो आप ना करें। बहरहाल ये तफसीलात हैं जो कि उन्होंने के क्रम में छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, कुरान में तो किरत से पढ़ना पड़ता है। भाई किरत के अंदर भी कोई सुरीली आवाज की जरूरत नहीं होती, किरत भी जो है ना वो मर्दों से सीखी जा रही होती है। ठीक है, सुरीली आवाज एक अलग चीज होती है, और किरत जो है ना ये यानी तजवीद, तजवीद सीखने के लिए हमारे यहाँ भी जो क्लास हो रही होती है ऑनलाइन, वो तजवीद वाली क्लास होती है। ये जो कारी अब्दुल बासित और कारी यानी सुदैस और कारी फलाने, ये इसको किरत कहते हैं। किरत एक अलग चीज है। किरत के अंदर बहुत ही बना करके और अच्छे अंदाज में और प्यारे आवाज में कुरान पढ़ना, वो एक अलग चीज है। तजवीद एक अलग चीज है। ठीक है, तो तजवीद के अंदर जो है ना ये सुरीली आवाज नहीं बनती है, किरत के अंदर सुरीली आवाज बनती है। दोनों के दरम्यान चीजों के दरमियान फर्क है। ठीक है, तो किरत की क्लासें ऑनलाइन ना लें तो ज्यादा बेहतर है। या ये क्या, अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो भाई पासवर्ड के साथ भी तो एक क्लास का सिस्टम होता है ना, और एक लिमिटेड आपकी ऑडियंस होती है। हमारी तरह दीन एसेंशियल्स तो हर हर चीज़ तो दीन एसेंशियल्स की शक्ल में नहीं होती है ना। ठीक है, चलें, बहुत देर हो गई इस क्लास के अंदर, टाइम खत्म तो बहुत देर हुआ हो गया। वाखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।